ओम शांति। साकारी आकारी निराकारी स्थिति की ड्रिल हम कैसे करें, कैसे अभ्यास बढ़ाएं, क्योंकि अब समय जो आ गया है वो है, समय भी कौन सा है, जाने का समय आने का समय, जाने का समय है ना, कैसे जाना है, साकारी रूप में जाना है कि आकारी रूप में जाना है कि निराकारी रूप में जाना है। हम निराकारी आए थे और निराकारी ही बन करके जाना है ना, निराकारी मन शरीर ही आए थे, आत्मा परम धाम से आई थी, अब हमको वापस अशरीरी आत्मा बन के वापिस घर जाना है। तो इसी बात को हम गहराई समझेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है जो पीछे पीछे बैठे ना आगे आ जाओ, सभी नजदीक आ जाओ ना, ताकि एकाग्र होकर सुन सकेंगे ना। आज सभी आगे, बहने भी सभी आगे आ जाओ, बहने माताएं सभी आगे आ जाओ, बीच में सीटें खाली मत छोड़ो ना। तो ये जो साकारी स्थिति है, साकारी स्थिति हमारी तीन स्थितियां साकारी हैं। सबसे पहले जो साकारी स्थिति हमारी है वो है जब हम सत्युग में आए थे ना? हमारी पावन सतोपदान स्थिति थी, हम भी देवी देवता थे ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म था हमारा, और तब हम संपूर्ण पावन सत्व प्रधान थे, जिसका गायन है सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परम, वो भी साकारी स्थिति थी, साकारी थी ना, शरीर में थे ना हम, पर सत्व प्रधान थे, हमारी बुद्धि भी सत्व प्रधान थी, मन भी सत्व प्रधान था, हमारे संस्कार भी सत्व प्रधान थे, और हमारी पांचों कर्मेंद्रियां भी सत्व प्रधान थी, हमारा शरीर भी सत्व प्रधान था, है ना, एक एक, एक कोशिका सत्व प्रधान थी, और हमारे जो पांचों तत्व थे, पूरे पूरी धरती, पूरा जल वायु अग्नि आकाश सत्व प्रधान थे, और हमारे कंट्रोल में थे, हम प्रकृति पति थे। फिर द्वापर युग आया, द्वापर युग में हम क्या हुए, वाम मार्ग में गए, देवता वाम मार्ग में गए, तो हम गिरे, रजो प्रधान हुए, फिर हम कलयुग में तमो प्रधान हो गए, है ना, तमो हुए, फिर तमो प्रधान हो गए, अभी अंत में आए तमो प्रधान हो गए, तो हमारी स्थिति बदली है ना, देवी देवता स्वरूप, साकारी देवी देवता स्वरूप, आदि देवी देवता स्वरूप, और मध्य में जैसे ही हम गिरे, हमारे जो साकारी जो आदि देवी देवता स्वरूप था उसकी पूजा होनी शुरू हो गई, उसके मंदिर बन गए, है ना, तो मंदिरों में हमारी पूजा शुरू हो गई, और मंदिरों में आज तक भी, अंत तक भी क्या है, हमारी स्टेज क्या है, अखंड दानी, अखंड दानी माना आज भी हमारी मूर्तियों के सामने जाकर के जो हमारे भक्त हैं, और हम भी भक्त बने, हम भी क्या थे, पूज्य से पुजारी बने, अपनी ही मूर्तियों के सामने जाकर के आज हम क्या महसूस करते हैं, अखंड दानी, दानी माना हम देहाभिमान में होते हैं, विकारों के वश होते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हमें सत्य ज्ञान आ जाता है, ज्ञान माना अंदर समझ आती, नहीं नहीं ये देह, हम देह नहीं है, देह का भान भूल जाते हैं, नाम मान शान भूल जाते हैं, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, साइंटिस्ट हो, उसके सामने जाके देवी देवता के सामने क्या महसूस करते हैं, ये पावन है, मैं पतित हूं, और ये जो है मैं देह, ये जो मेरा नाम मान शान से परे हो जाते हैं, देह भान से भी परे हो जाते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए हमें सत्य की समझ आ जाती है, सत्य की ज्ञान माना सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, अपना सत्य स्वरूप समझ में आने लगता है, रियलिटी कि मैं भले नाम मान शान से दुनिया में कुछ भी हूं, किंतु हूं तो मैं, अब मेरी स्थिति तो कैसी हो गई है, मैं गिर गया हूं, मैं गिर गई हूं, पतित हो गए, और ये मुझे, ये मेरा असली स्वरूप नहीं है, जो मैं जिसको लेकर मैं संसार में जी रहा हूं, जी रही हूं, ये मेरा असली स्वरूप नहीं है। देवान अखंड दान मतलब वहां से आज दिन रात 24 घंटे आज हमारी मूर्तियों से क्या मिल रहा है, कोई भी जाए, किसी भी धर्म वाला जाए, किसी जाति वाला जाए, गरीब जाए, अमीर जाए, बिना किसी भेदभाव के, है ना, हरेक को जाकर के क्या मिलता है, सत्य की समझ आती है, थोड़ी देर के लिए तो आती है, अल्पकाल के लिए आती है, फिर अखंड महादानी सबका मन शुद्ध हो जाता है, कैसे भी गंदे भाव लेके जाए मंदिर में, है ना, आज भी हमारी मूर्तियों के सामने जाके वो शुद्ध पवित्र हो जाता है, मतलब ये आज भी हमारी मूर्तियों से महादान मिल रहा है सबको। दान होता है ज्ञान का, महादान होता है पवित्रता का। ये हमारी मन बुद्धि शुद्ध हो जाए थोड़ी देर के लिए, भले अल्पकाल के लिए होती है। फिर अखंड वरदानी, वरदानी माना हमारे सामने हमारी मूर्ति के सामने जाते ही सबको क्या शांत शांति, मन बुद्धि शांत हो जाता है, विचार की स्पीड खत्म हो जाती है। उनको लगता है ये जो मूर्ति से मुझे बहुत प्यार के वाइब्रेशन आ रहे हैं, भले दुनिया में जो कोई प्यार ना करे किंतु ये मूर्ति मुझे सामने देवी देवता जो भी देवी है देवता मेरे से बहुत प्यार है उसको, अद्वित सुख की फीलिंग आती है, आनंद की फीलिंग आती है। और कई बार बुद्धि में कंफ्यूज होते हैं और वहां जाकर के अपने ईष्ट के सामने जाकर के सत्य को परखने की शक्ति आ जाती है, विवेक जागृत हो जाता है, निर्णय हो जाता है, पहाड़ जैसी बात छोटी हो जाती है, मन बुद्धि को समेटना आ जाता है, झगड़ा भी किसी से हुआ था नहीं, मुझे अब नहीं करना झगड़ा, सहन करने की शक्ति आ जाती है, समाने की शक्ति आ जाती है थोड़ी देर के लिए भले, सामना करने की शक्ति आ जाती है, सहयोग करने की शक्ति आ जाती है, मतलब आठों शक्तियां आ जाती है थोड़ी देर के लिए आदमी। तो आज भी अंत में भी हमारी मूर्तियों से क्या मिल रहा है उनको, अखंड दान, अखंड महादान और अखंड वरदानी मूर्त। हम क्यों सत्युग में ऐसे रहे हैं और वो अभी बनना है हमको, अभी बनना क्या बाद में बनना है, अभी बनना ना। तो आज अखंड महादान और फिर संगम पर जैसे हम गिरते हैं तो संगम पे क्या होता है, बाबा आकर के शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आके हमें अपना क्या बना लेता है, शूद्र से हम वैश्य और शूद्र से कहां पहुंचते हैं, शूद्र बन जाते हैं, तो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बना लेता है, शूद्र से शुद्ध बना लेता है, क्या बना लेता है, शूद्र से शुद्ध बना देता है, माना हमें ब्राह्मण बना देता है और अपनी गोद में बिठा लेता है, और गोद में बिठा के हमको क्या सिखाता है, राजयोग सिखाता है, राजयोग और ज्ञान सत्य की समझ देता है, सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देता है, समझ देता है, बच्चे तुम ये नहीं तुम ये हो, तुम्हारा ये पार्ट है, तुम ये बनने वाले हो, हमारी स्मृति जागृत करता है ना। तो अब हमको ये हमारा तीन सहकारी स्वरूप है ना, और हम ही अगर हमें स्मृति आ जाए कि हम ही देवता थे, फिर अभी मध्य में हमारी पूजा हो रही है, बीच में हम गिरे हैं वाम मार्ग में गए, अब हमको वापिस क्या बनना है, ब्राह्मण से क्या बनना है, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है ना, फरिश्ता से क्या बनना है, फरिश्ता से फिर अशरीरी बनकर के वापस घर जाना है, मतलब हमें निराकारी साकारी देह में जो अभी हमें ब्राह्मण स्वरूप में है, फिर हमको फरिश्ता माना आकारी स्वरूप बनना है, और फिर हमको क्या बनना है, निराकारी स्वरूप बनकर के बिंदी आत्मा बनकर के परमधाम घर में जाना है, और वहां से फिर परमधाम से वापिस इस दुनिया में आना है, देवता बनकर के आना है, देवी देवता बनकर के आना है, ठीक, संपूर्ण पावन तत्व प्रधान बन के यहां आकर के धरती पर वापस आना है। तो साकारी आकारी निराकारी राइट। अब साकारी स्थिति हमारी कैसी है, अभी अभी हम ब्राह्मण स्वरूप में हैं, तो अब ब्राह्मण स्वरूप जो है हमारा, अगर हम ब्राह्मण शब्द की परिभाषा को गहराई समझ लें, जैसे ब्रह्मा शब्द की परिभाषा क्या है, ब्रह्मा ना, ब्रह्मा का ब्रह्म ना बेहद, बेहद की मां, बेहद क्या, बेहद माना सारे जितने भी मनुष्य हैं धरती पर, जितने भी मनुष्य हैं सारी पूरी धरती पर सबकी मां, शिव बाबा सबका पिता है, और ब्रह्मा शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा सबको इस सृष्टि की रचना करता है, किसी धर्म जाति के हों, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी धर्म के हों, जैन हो है ना, किसी कोई भी समाज के हों, वो सब के सब ब्रह्मा की संतान है राइट। खाली ब्रह्मा कुमारी नहीं, सभी ऐसे ही ब्राह्मण, बाबा शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमको अडॉप्ट करता है और हमको हम ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण का मतलब क्या है, ब्राह्मणा बेहद, ब्राह्मण यथा जिसकी बेहद की बुद्धि हो जाती है, बेहद माना अभी मनुष्यों की बुद्धि, हम जब मनुष्य थे शूद्र थे हमारी हद की बुद्धि थी, हद की बुद्धि माना हम अपने को देह समझते थे, देह की हद है ना, एक दिन देह पैदा हो एक दिन मर जाएगी है ना, हम अपने आपको डॉक्टर इंजीनियर माँ बाप भाई बहन पति पत्नी समझते थे, वो भी हमारे नाम जो लेबल लगे हैं वो भी एक दिन पैदा होते हैं, एक दिन खत्म हो जाते हैं। धन संपत्ति भी एक दिन मिलती है, एक दिन खत्म हो जाती है, बदलती रहती है। तो सत्य नहीं है, सत्य सदा रहता है और बदलता नहीं है। तो बेहद माना सत्य है जो सदा ही है, अविनाशी, जन्म मरण से परे है और कभी बदलता नहीं। तो मैं आत्मा हूं, हमें बाबा ये समझ दे रहा है बेहद, ये बेहद हमारी बुद्धि में डाल रहा, बच्चे तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो, तुम इस देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा। और फिर बाबा कह रहा बच्चे तुम जो आपस में समझते हो ये मेरा पति है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये तुम्हारे, तुम इसके बच्चे नहीं हो, ये तुम्हारे शरीर के माँ बाप है। तुम्हारे जो आत्मा का बाप तो मैं हूं, परमात्मा हूं। तो और मैं इस ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहा हूं, और फिर और हर समय दे रहा हूं, हर जगह दे रहा हूं। और फिर बाबा हमको सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान भी दे रहा है। सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान क्या है कि इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। इसलिए अब तक जो कुछ, और परमात्मा कहता है मैं इस सृष्टि रूपी ड्रामा का क्रिएटर भी हूं, डायरेक्टर भी हूं और हीरो प्रिंसिपल एक्टर भी हूं, मतलब हीरो एक्टर भी हूं, सबसे बड़ा हीरो मैं ही हूं और सुप्रीम जस्टिस भी हूं। और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा हूं। इसलिए अब तक जो कुछ भी हुआ है अच्छा हुआ है। हम ही समझते हैं इसके कारण हमें, मुझे ये हुआ, मेरा दुख, मेरी परेशानी, मेरा तकलीफ, मेरी जो आज सर्कमस्टेंस है, इनके कारण हुआ। बाबा ने कहा बच्चे जो कुछ भी आज तुम्हें माता पिता मिले हैं, भाई बहन मिले हैं, तुम्हें शरीर में रोग मिले हैं, तुम्हारे शरीर में कोई डिफेक्ट है या कोई तुम्हें मानसिक बीमारी है, क्यों हुई है? तुम्हारे अपने कर्मों का हिसाब किताब है। किसी ने तुमको दिया नहीं है, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, दर्द दिया, तकलीफ दी, किसी ने इंसल्ट की, गाली दी, वो क्यों दी? क्योंकि तुमने पिछले जन्म में दी थी, उसको अब ब्याज के साथ तुम्हें वापस वो देगा या देगी। अगर तुमने सुख दिया तो सुख भी मिलेगा, वो भी ब्याज के साथ मिलेगा। तो बाबा ने ये बड़ा क्लियर कर दिया। पहले हम समझते थे नहीं, इनके कारण हमें दुख मिला है, इनके कारण हमको सुख मिला है, नहीं। अब बाबा ने समझा बच्चे ये तुम्हारे अपने कर्मों का फल है, जैसा बीज बोया था वैसा फल मिला, तो जो हुआ अच्छा हुआ। अब जो हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब हम बाबा की गोद में बैठे। बाप दादा मान शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें अपनी गोद में बिठा करके और मुझे राजयोग सिखा रहे, और अब बाबा मुझे हर संबंध से पालना दे रहा है, हर संबंध की पालना, माता पिता, टीचर, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सज्जन, बच्चा, है ना, 9 संबंध तो मुख्य है ही, तो हर संबंध की पालना दे रहा है। और भी जो भी संबंध आप चाहो, खाना बना रहे तो आपके साथ खाना बनाने वाला, कपड़े धो रहे कपड़े धोने वाला, गाड़ी चला रहे तो गाड़ी चलाने वाला, है ना, आप कुछ भी काम करो, सफाई कर रहे सफाई करने वाला, आपके साथ हर समय है और हर जगह है। बाबा कहते मुझे यूज करो, है ना। और फिर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा बहुत अच्छा, क्योंकि अभी मैं बाबा की श्रीमत पे कार्य कर रहा हूं और बाबा से हमेशा कंबाइन हूं, तो मेरे हर कर्म जैसा बीज वैसा फल, तो कल बहुत अच्छा होगा, परसों उससे भी अच्छा, तरसों उससे भी अच्छा, और भविष्य में तो बहुत अच्छा होगा, सबसे अच्छा होगा। हम सत्युग में जाएंगे, वहां हमारी शरीर निरोगी काया होगी, है ना, सत्युग में हम सोने हीरे जवाहरात के महल में रहेंगे, कोई वहां कोर्ट नहीं होगी, जेल नहीं होगी, हमें काम नहीं कुछ करना पड़ेगा, सुखी सुख होगा, है ना, भरपूर होगा। और कितने दिन के लिए? 25 साल के लिए, एक दो दिन के लिए नहीं, 2500 साल हम कुछ भी एकदम मस्त रहेंगे, भरपूर रहेंगे, एकदम अत्यंत सुख आनंद में सदा रहेंगे, कभी किसी बात की प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ना चिंता, ना डर, ना जल्दीबाजी, ना ईर्ष्या द्वेष, पुलिस कोर्ट सब खत्म, खूब जगह होगी, खूब अच्छी सब कुछ भरपूर होगा, है ना। तो ये बाबा ने हमको सिखाया, इसको हम एबीसीडी भी कह देते हैं ज्ञान को, ना, ए आत्मा, बी बाबा, सी कनेक्शन, वहां संबंध, और डी ड्रामा। तो ये जो हमारी साकारी स्थिति है ना, साकारी स्थिति, ये जो बाबा ने ज्ञान दिया, मुरली जैसे आज की मुरली थी बाबा ने, आज बाबा ने क्या कहा, बड़ा बाबा क्या कर रहा है, हम बड़े आदमियों क्या ज्यादा मेहनत नहीं देता है, क्या कहता है, बस अलिफ और बे को याद करो, अलिफ माना अल्लाह को याद करो, और बे माना बादशाही, माना वर्षे को याद करो। बाबा को याद करो और वर्षे को, बाबा को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा, मतलब घर को याद करो, घर में परम धाम, घर में बाबा को याद करो, सूक्ष्म वतन में नहीं, कहां पर, परम धाम घर में बाप को याद करो और वर्षा, वर्षा माना जो आने वाला दुनिया है, आने वाली दुनिया जो है सत्युग में, सत्युग में हम राज रानी होंगे, प्रिंस प्रिंसेस होंगे, उसको याद करो। एक बात हमको समझनी है कि हम सारे विश्व के आधार मूर्त हैं, जो अष्टरतन है वो पूरे के पूरे 800 करोड़ आत्माओं के पूज्य हैं, किसी भी धर्म जाति के हों सबके पूज्य, 108 रतन भी वैजयंती माला, उसको सभी धर्म वाले उनकी माला जपते हैं। तो आज 800 पौने मतलब पौने लगभग 750 से ज्यादा लोग, 760 करोड़ लोग आज धरती पर हैं, उन सबके पूज्य हैं वो, हिंदू धर्म वाले भी, मुस्लिम वाले भी माला जपते हैं, और सिख धर्म वाले भी माला जपते हैं, और क्रिश्चियन लोग भी माला जपते हैं, ना सभी माला जपते हैं, 108 की सब माला जपते हैं, और कोई बीमारी होने पर अष्टरत्नों की अंगूठी पहनते हैं, मुसलमान लोग भी पहनते हैं, ना क्रिश्चियन भी पहनते हैं, तो इतने लोग तो सत्युग के अंत तक 108 ही राजा रानी बनेंगे, और त्रेता के अंत तक 16108 ही बनेंगे। अगर 16108 बनेंगे तो अगर हम देखें तो लगभग 500,000 आत्माएं एहड़े के पीछे हैं, 108 के पीछे सारा दुनिया है, उस सारे विश्व के आधार मूर्त हैं। अगर हम त्रेता के अंत तक भी हम बनना चाहते हैं राजा रानी, सत्य के राजा रानी रानी नहीं बनना चाहते, अगर वहां तक भी आना है हमको, क्योंकि राजयोग है ना, राजयोग में राजा रानी बनने का योग, प्रिंस प्रिंसेस बनने का योग, अगर हम वो बनना चाहते हैं तो हमको कम से कम 500,000 लोग हमारे पीछे हैं, हम जो कुछ भी करते हैं हमें 500,000 लोग फॉलो करते हैं। अगर 108 की माला में आना है तो हमें सारा विश्व फॉलो करते हैं, क्योंकि हम आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त हैं और उदाहरण मूर्त हैं, हमें सैंपल बनना पड़ेगा। तो हमको जो हम जो करेंगे, हम जो सोचेंगे वही दूसरे वो लोग सोचेंगे। अगर हम मुझे 108 की माला में आना है तो ये टेंशन रही मेरी सोच, मेरी हर संकल्प पे कनेक्शन है कि मेरे हर संकल्प से सारी दुनिया प्रभावित होगी, मेरे हर बोल से दुनिया प्रभावित होगी, मैं क्या देखता हूं उससे सारी दुनिया पर, मतलब मेरे कर्म, जो मैं कर्म करूंगा मुझे देख के सारी दुनिया करेगी। अभी क्या प्रॉब्लम है हम लोगों में, क्या प्रॉब्लम है बाबा के बच्चों में, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? हम सोचते हैं अभी तो विनाश होगा, जब होगा देख लेंगे, अभी तो पुरुषार्थी हैं, बन जाएंगे, है ना, अंत होते होते निराकार स्थिति हो जाएगी, है ना, ऐसे सोचते हैं ना नहीं? तो निराकारी अगर आधार मूर्त ऐसे सोचेंगे, दुनिया को बनाने वाले ऐसे सोचेंगे, तो क्या हालत होगी सोचो। जब ये बहुत काल का अभ्यास होगा निराकारी स्थिति में रहने का, ये ड्रिल करने का, साकारी आकारी निराकारी स्थिति का ड्रिल करने का अभ्यास होगा, तब ही हम क्या कर पाएंगे, तब जो विनाश के साधन है जो तैयार है लगभग, तब वो शुरू करेंगे ना। अभी हम इंतजार करें, अगर हम ही इंतजार करेंगे तो इंतजाम करने वाले ही इंतजार करेंगे तो कैसे काम चलेगा? इंतजाम किसको करना है, कौन करेगा? विनाश का इंतजाम कौन करेगा? और विनाश किसके लिए होगा मुझे बताओ, विनाश किसके लिए होने वाला है, किसके लिए विनाश होना है, किसके लिए होने वाला है विनाश? विनाश हमारे लिए होने वाला ना, हम तैयार, हम जो सर्वगुण संपन्न आत्माएं बनेंगी, सत्व प्रधान आत्माएं बनेंगी, उस धरती पर रहेंगी क्या, गंदी धरती पर रहेंगी क्या, जहां पे इतने इतना कचरा पड़ा हुआ है, इतनी गंदगी पड़ी हुई है, ऐसे लोग रहते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाइयां करते हैं, आतंकवादी रहते हैं, उस धरती पे हम रहेंगे क्या, रहेंगे? कोर्ट पुलिस थाने, कितना कंफ्यूजन, कितना पोल्यूशन, ऐसी धरती पे हम रहेंगे क्या? तो किसके लिए विनाश होगा? हमारे लिए। पर कब होगा? जब हम संपूर्ण बनेंगे, और संपूर्ण बनने की हम इंतजार कर रहे हैं कि समय आएगा तो बन जाएंगे, देखो सभी अभी इमरान खान भी बोल रहा है कि मैं बटन दबाऊं पर वो दबा नहीं पा रहा है ना, क्यों नहीं दबा पा रहा है। अमेरिका भी बोल रहा है मैं बटन दबाऊं, रशिया भी बोल रहा है मैं बटन दबाऊं, चाइना वाला भी बोल रहा है मैं भी बटन दबाऊं, नॉर्थ अमेरिका वाला भी बटन दबाने की सोच रहा है ना, ईरान वाले भी सोच रहे हम भी दबा दें, पर दबा हमारी हालत देख के वो भी हिल जाते हैं ना। नहीं ऐसा तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो चार बातें पक्की करो, अगर हमें साकारी आकारी निराकारी स्थिति का अभ्यास करना है, ड्रिल हमारी एक्यूरेट बन जाए। पहली बात ब्रह्मचर्य, अगर हमारे ब्रह्मचर्य में कमी है, कहीं भी कमी है, पहले तो फिजिकल तौर पे, जैसे इनके साथ भी अभी तो मान लो शादीशुदा हो, पति पत्नी हो, या अदरवाइज कुमार हो, कुमार कुमारी हो, तो भी किसी भी देहधारी को देख के हमारे मन में ये संकल्प ना आए कि ये स्त्री है या पति या पुरुष है ना, ये भान आए कि ये भी आत्मा मैं भी आत्मा। और इसके लिए प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, टेलीविजन, व्हाट्सएप है ना, अखबार, ये सबसे निकलने की आवश्यकता पड़ेगी। जो हम लोग टेलीफोन पे बातें करते हैं, बहुत सारी लोगों से संबंध संपर्क रखते हैं, ये सब छोड़ना पड़ेगा। इसकी दृढ़ता से प्रतिज्ञा, अगर हमारा ब्रह्मचर्य पक्का नहीं है तो हम कभी भी माना हम साकारी स्थिति में ना, ब्राह्मण भी नहीं है तब तो, और ब्राह्मण कभी भी फरिश्ता नहीं बन सकता, मतलब मनुष्य कभी फरिश्ता नहीं बन सकता, ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बन सकता है, ब्राह्मण ही आकारी सो निराकारी बन सकता है, निराकारी बनेगा तो निर्विकारी बनेगा, निर्विकारी बनेगा तो निरंकारी बनेगा, जब निरंकारी बनेगा तो देवता सर्वगुण संपन्न सर्वगुण आएंगे, तब सोलह कला संपूर्ण बनेगा, तब संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म बनेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं हमारी इसमें कमी होती है, किसी ना किसी से लगाव हो जाता है, किसी ना किसी देहधारी से लगाव, अपने बच्चे से लगाव हो गया, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, किसी का अपनी बहन में, किसी का अपने भाई में, ये लगाव भी ब्रह्मचर्य को तोड़ना है, किसी के साथ झुकाव होना भी ब्रह्मचर्य को तोड़ना है, किसके प्रभाव में आना भी ब्रह्मचर्य को तोड़ना है, किसी से बुद्धि में टकराव रखना भी ब्रह्मचर्य को तोड़ना है, किसी बात में क्या क्यों कैसे करना भी ब्रह्मचर्य को तोड़ना है। ड्रामानुसार सब कुछ ठीक हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, शिव बाबा डायरेक्टर है ना, परमात्मा डायरेक्टर है, और मैं उसमें क्वेश्चन उठा रहा हूं, ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों होना चाहिए, बाबा का बच्चा हो कैसे करते हैं क्या, ऐसे करते हैं क्या, यज्ञ में भी ऐसे करते हैं क्या, उनका रोल है, पार्ट है ड्रामा में, हर एक का रोल है। बाबा कहता है बख्तावर देखना हो तो यहां देखो, और कंबख्त देखना हो तो यहां देखो, सबसे ज्यादा समझदार देखना हो तो यहां देखो, और महान मूर्ख देखना हो तो यहां देखो, बाबा के बच्चों में सब है ना। नहीं तो हमें किसी बात पर क्या क्यों कैसे करना ही नहीं है ना, राइट। तो ब्रह्मचर्य का मतलब गहरी से इसकी डेफिनेशन समझनी है, ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म तत्व में रहकर जैसे आत्मा एक दूसरे के साथ आचरण करती है ना, ऐसा ब्रह्मचर्य चाहिए। तो जितना ब्रह्मचर्य पक्का होता जाएगा उतनी हम साकारी से अकारी स्थिति का अनुभव होता जाएगा, क्योंकि मेरा बाबा परम पावन है, सदा ही पावन है, एवर प्योर है, और मुझे क्या बनना है, मुझे पावन बनना है। तो पहला स्टेप ब्रह्मचर्य है, इसमें अगर हमें कमजोरी है तो ये भूल जाओ कि हम 108 की बाला में आ सकते हैं, 16,000 भी नहीं बन सकते हैं। जितना जितना हम इसमें पक्का होंगे तभी हम पहली स्थिति हमारी ये वाली होनी चाहिए, तभी अमृत वेला योग होगा, तभी मुरली अंदर जाएगी, अंदर रिकॉर्ड होगी, तभी अटेंशन रहेगा, सारा दिन में ट्रैफिक कंट्रोल रहेगा, ट्रैफिक कंट्रोल पे अटेंशन रहेगा, घंटे घंटे में बाबा याद आएगा, हर घंटे में बाबा याद आएगा, हर 10 मिनट बाद बाबा याद आएगा। अगर 108 की माला में आया तो हर 10 मिनट में बाबा याद आना चाहिए, हर 10 मिनट में 108 की माला में आना, कितने मिनट में आना चाहिए, हर 10 मिनट में बाबा और बाबा की, बाबा की, बाबा याद आना चाहिए, बाबा की मुरली याद आनी चाहिए, बाबा ने आज क्या कहा, जैसे बाबा ने कहा बाबा को पावन बनाने में मजा आता है, इसके लिए सत्व प्रधान बनना पड़ेगा, हमको सत्व प्रधान, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेंगे सत्व प्रधान बनेंगे। अगर 108 की माला में आना तो ट्रैफिक कंट्रोल, जब ट्रैफिक कंट्रोल होता है ना सुबह 4:30 बजे, 8 बार ट्रैफिक कंट्रोल होता है दिन में, 3:30 बजे, 5:45 बजे, 7 बजे होता है ना, 10:30 बजे, 12 बजे, 5:30 बजे, और फिर 7:30 और रात को 10 बजे है ना, आठ बार होता है ट्रैफिक कंट्रोल, आठों बार बाबा जोर से, ये तीन मिनट तो कम से कम याद आना चाहिए और बाबा की मुरली के तुरंत अंदर चलना चाहिए, तब 16,000 की माला में आने का चांस है। ऐसे नहीं कि ट्रैफिक कंट्रोल राम हम सो रहे हैं, हम तो परवाह नहीं कर रहे हैं ना, और नहीं तो घंटे में 6 बार 108 की माला में आना, तो पक्का बाबा और बाबा की मुरली याद आनी चाहिए। तो ब्रह्मचर्य तत्व को मतलब ब्रह्मचर्य का पक्का पक्का पालन होना चाहिए, है ना। जितनी पवित्रता बढ़ती जाएगी उतना बाबा से अमृत वेला पावरफुल होता जाएगा, उतना मुरली सारा दिन अंदर, मुरली अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी और फिर सारा दिन बजती रहेगी अंदर, अपने आप से मुरली बजती रहेगी, अपने आप ही याद आता रहेगा बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने ये आज कहा, बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने ये आज कहा। नहीं तो बाबा की मुरली याद नहीं आएगी, दुनिया ने क्या कहा वो याद आएगा, उसने मेरे को ऐसे किया, उसने मेरे को ऐसे किया, उसने मेरे को ये किया, तो फिर क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट चलेगा। तो मुरली मेरे अंदर सारा दिन बजती रहे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितना पवित्रता को अपनाओ, गहराई से जाओ, है ना, चलते फिरते उठते बैठते सबको कहीं भी कोई संबंध संपर्क में हो, छोटा बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो, किसी से लगाव झुकाव प्रभाव टकराव नहीं होना चाहिए, क्या क्यों कैसे नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसा बनना चाहिए। तो पहली बात है पवित्र ब्रह्मचर्य, दूसरा शुद्ध सात्विक भोजन। अगर हमें पराठे पकौड़े समोसे खाने का शौक है, गरम मिर्च मसाले खाने का शौक है ना, यह है सात्विक भोजन, मिठाइयां खाने का शौक है, तो हमारा योग लगेगा नहीं, लगाओगे योग ऊपर को जाओगे नीचे को, शरीर नीचे खींचेगा, आलस आएगा, नींद आएगी, झटके आएंगे, मुरली में भी नींद आएगी और वैसे भी नींद आएगी। जब भी अच्छा काम करना चाहिए दिमाग चलेगा ही नहीं, संकल्प चलेंगे नहीं, मनन चिंतन चलेगा ही नहीं, आप 1000 कोशिश करके देखो। और फिर तामसिक भोजन, तामसिक भोजन कौन सा होता है, नॉन वेज खाते ना, मांसाहारी भोजन खाते हैं, अंडा खाते हैं कई लोग, लहसुन प्याज लेते, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते है ना, कैंपा कोल कोको कोला पीते, थम्स अप स्प्राइट सब पीते ना, इसमें बहुत कैफीन होती है, चाय कॉफी पीते है ना, अचार खाते, गरम मसाले खाते है ना, बहुत ज्यादा हॉट चीजें लेते हैं ना, चटपटा बहुत ज्यादा खाते, ये तो उत्तेजना पैदा करने वाले, गुस्सा आता, चिड़चिड़ापन आता, बेचैनी आती है अंदर शरीर में, तो योग कभी लगेगा ही नहीं, सारा दिन गुस्सा आता रहेगा, बात में चिड़चिड़ होते रहेंगे अंदर से। तो दूसरी बात ये कर लो, समझ लो पक्का कि हमको आज के बाद बिल्कुल सिंपल सादा भोजन खाना है। योगी का भोजन बहुत सादा होता है और थोड़ा होता है, ज्यादा नहीं, ज्यादा खाओगे तो भी नींद आएगी, भारी हो जाएगा पेट, गैस बढ़ जाएगी पेट, पचेगा नहीं, खूब छवा छवा खाओ और बाबा की याद में खाओ, बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ। तो शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध माना शुद्ध मन से बाबा की याद में बनाया हुआ, सात्विक माना सात गुणों को बढ़ाने वाला, अंकुरित दलिया सब्जी रोटी चावल दूध दही है ना, ये चीजें, फल सब्जियां सलाद, ये ज्यादा मतलब, और टाइम पे खाओ, ये नहीं कभी बार बार खाते रहो, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, ऐसे नहीं, कम से कम 3 घंटा तो कम से कम बीच में गैप रखो, है ना, एक बार खाया 3 घंटा गैप रखो, राइट। तो शुद्ध सात्विक भोजन, और तीसरी बात है फिर सत्संग। एक बाबा सत्य क्या है, सत्य का संग, माना एक बाबा सत्य है और मुरली सत्य है, बाकी अखबार मैगजीन और चीजें पढ़ना, इधर की बातें उधर की बातें, आचार्य रजनीश ने क्या बोला था, उसने क्या बोला था, उसने उस गुरुजी क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, किसी की बात सुनना छोड़ दो, एक बाबा की सुनो बस और किसी की मत सुनो। सारा दिन कान में लगा के रखना, कुछ ना कुछ सुनते रहना, सुनने की बजाय चिंतन करो ना, तरीका क्या है, रिवाइज करो बाबा की मुरली का एक महावाक्य, रिवाइज करो और रियलाइज करो, अनुभव करो, एक एक जैसे बाबा ने कहा रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। अब देखो रूहानी बाप कौन, परमात्मा, रूहानी बच्चे माना हम आत्मा, बाबा परमात्मा मुझको बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है, इसी में खो जाओ, अनुभव करो, है ना, इसको बार बार रिवाइज करो, रूहानी बाप परमात्मा माना भगवान मुझसे बात कर रहा है, किससे, आत्मा से बात कर रहा है, सतीश गुप्ता से बात नहीं कर रहा, डॉक्टर से बात नहीं कर रहा, किससे बात कर रहा है, अगर मैं अपने को डॉक्टर समझू तो डॉक्टर से बात नहीं कर रहा है वो, सतीश गुप्ता समझू सतीश गुप्ता से बात नहीं कर रहा है, किससे बात कर रहा है, आत्मा से बात कर रहा है। बच्चा कौन है, शिव बाबा का बच्चा कौन है, आत्मा, मैं नहीं, ये नहीं, मैं आत्मा। तो ये अपने आप को गहराई समझने की आवश्यकता है। बच्चे तुम अपने को देह नहीं, तुम अपने को आत्मा समझ के हर काम करो। आत्मा में सब कुछ है, आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार, आत्मा ही सब कुछ संस्कार उसमें, आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही देखती है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही बोलती है। तो मैं जब सुन रहा हूं तो कौन सुन रहा है? मैं आत्मा सुन रही हूं। बोल कौन रहा है? आत्मा सुन रही, आत्मा बोल रही है। देख कौन रहा है? आत्मा देख रही है। हार्ट कौन चला रहा है? आत्मा चला रही है। आत्मा से ऐसी करंट आ रही है, हार्ट चल रहा है। अगर करंट आनी बंद होगी, हार्ट बंद हो जाएगा। आत्मा से करंट आ रही है, फेफड़े में जा रही है। आत्मा से करंट आ रही है, पेट में खाना पच रहा है। आत्मा से करंट आ रही है, पैर चल रहे हैं। आत्मा से करंट आ रही है, पैर हाथ काम कर रहे हैं। आत्मा से करंट आ रही है, दिखाई दे रहा है। आत्मा से आंखों में करंट नहीं आए तो दिखाई देना बंद हो जाए, है ना। ऐसे चलते फिरते ये अभ्यास करना, ये अनुभव करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, है ना। रिवाइज करो, रियलाइज करो। तो बाबा क्या क्या बताया? एक तो ब्रह्मचर्य, दूसरा शुद्ध सात्विक भोजन, तीसरा सत्संग। बस बाबा और मुरली, और दूसरा कचरा मत डालो। अगर पेट्रोल डाल रहे हो गाड़ी में, थोड़ा उसमें कचरा भी डाल दो बीच बीच में, तो क्या होगा? गाड़ी चलेगी क्या? हम लोग क्या करते हैं? सुबह मुरली डालते हैं, फिर उठ थोड़ी देर घर गए, अखबार देखना शुरू करते हैं, फिर व्हाट्सएप पे लग जाते हैं। ये क्या है? क्या डाल रहे हैं? टंकी में क्या डाल रहे हैं? अंदर क्या डाल रहे हैं? तो कचरा आने के चांस ज्यादा है कि पेट्रोल आने के चांस ज्यादा है? बताओ, कचरा आने के चांस ज्यादा है ना, तो गाड़ी रुक जाएगी ना, चिंतन चलेगा ही नहीं। थोड़ा भी कचरा डाला हमने तो क्या होगा? कभी भी गाड़ी रुक जाएगी ना, नहीं। इसलिए हमको कचरा डालना ही नहीं है, कुछ भी दुनियावी चीज हमको डालनी नहीं है। ये बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? थोड़ा तो न्यूज देखनी पड़ेगी ना, नहीं देखनी पड़ेगी? थोड़ा न्यूज देखनी पड़ती है, नहीं देखनी पड़ती? थोड़ा तो अखबार पढ़ना ही पड़ेगा ना, नहीं पढ़ना पड़ेगा? कहाँ जाना है? दुनिया में जाना है कि ऊपर जाना है? तो परम धाम का अखबार कौन सा वाला है? मुरली है ना, तो मुरली को देखो ना बार बार, यही हमारा अखबार है। जितना इसका अभ्यास करेंगे बार बार, एक एक लाइन एक एक लाइन। कई लोग कहते हैं योग क्या चीज है? योग कुछ और नहीं है, यही मुरली को बार 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 बार, ये मुरली अखबार है हमारा। इसमें आत्मा, परमात्मा, परम धाम, सुख धाम, नई दुनिया, पुरानी दुनिया, सबका समाचार होता है। क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला? बाबा बता रहा, विनाश होने वाला ना। क्या क्या आएगा? भूकंप आएंगे, बाढ़ आएगी, अकाल पड़े, सब तो बता रहा। और क्या खबर चाहिए? वो करें, हम करेंगे, उनको पता नहीं है कब करना है। भगवान तो कह रहा होने वाला है ना, नहीं होने वाला है? तो सब कुछ तो बता रहा है। तो अखबार, वो वाला अखबार अच्छा है, ये वाला अखबार अच्छा है? वो तो चिल्लाते रहते हैं ऐसे ही फालतू में, भगवान तो एकदम बात समझा रहा है ना। नहीं, और हमको जाना है वापस ना घर। साथी बन के जाना, बराती बन के जाना, सजा खा प्यार से जाना, सजा खा के जाना। तो ये जो ज्ञान का मनन चिंतन, मतलब एक सत्संग और फिर दैवी गुणों की धारणा। अब गुणों को छोड़ते जाओ, दैवी गुणों की धारणा करते जाओ। कभी भी क्रोध आए किसी के ऊपर, कोई चिंता आए, जल्दीबाजी है, नहीं मुझे नहीं करनी, टाल दो, कल करेंगे, परसों करेंगे। बाबा को बोलो, किसी भी गुस्सा आए तो बाबा ये ऐसे से, बाबा ये ऐसे ठीक नहीं कर रहा, आपको पता है बच्चा ठीक से काम नहीं कर रहा, बाबा आप ही समझा देना, मैं नहीं बोलूंगा। बाबा उसको टच करेगा, आप देखेंगे जादू हो जाएगा अपने आप। एक दिन नहीं होगा, दो दिन नहीं होगा, तीन दिन, अपने बाबा अपने आप समझाओगे तो असर नहीं पड़ेगा। किसी को भी एम्प्लॉय को समझाना, आपका इन दुकान है, आपकी बिजनेस है, आपके नीचे काम करते हैं, किसी को आपने कुछ कहना, बाबा को बोलो बाबा आप ही समझा देना। आप तो प्यार से टोली बांटते रहो, कुछ ना कुछ खिलाते रहो। इंचार्ज का मतलब क्या है? जो इन माना अंदर रह करके अपने आप को चार्ज करता रहे, शांति प्यार खुशी बांटता रहे, ठीक है। तो बाकी दैवी गुणों की धारणा करते जाओ, ठीक है। अच्छे जो बाबा ने गुण बताए उनको धारणा करते जाओ। तो जितना ये एबीसीडी का मनन चिंतन मंथन करते जाएंगे, बार बार रिवाइज और रियलाइज करते जाएंगे, इसको कहते हैं देही मान स्थिति। क्या कहते हैं? ऐसे मैं चलते फिरते बाबा की मुरली निकाल के बार बार बाबा की एक मुरली का एक लाइन को पढ़ता हूं, रिवाइज करता हूं बार बार, फिर उसमें एक लाइन का अनुभव होने लगता है, एक एक अक्षर का अनुभव होने लगता है। बाबा ने आज क्या कहा? बाबा ने कहा बाबा को पावन बनाने में बहुत मजा। मजा माना क्या? बाबा पावन बनाने में मजा क्यों आ रहा है उसको? बाबा क्या करने आया? पावन बनाने आया ना हमको। तो हम पावन बन गए तो उसको लगता है जैसे कोई पेड़ लगा रहा हो और पेड़ पे फल आ जाए, तो माली को खुशी होती नहीं होती, तो मजा आया नहीं आया। हम पावन बन गए तो उसको खुशी हो रही है, मजा आ रहा है, और हमको पावन बनने में मजा आ रहा है, क्योंकि हम हमारा अभी लक्ष्य क्या है, जाना तो है वापस घर पे। अगर नहीं बने तो डंडे खा के जाना पड़ेगा, पिटाई खा के जाना पड़ेगा, सजाएं खा के जाना पड़ेगा, पद भी कम हो जाएगा। तो ये हम समझदारी करने, दो हाथ में लड्डू रखने की कोशिश नहीं करो, एक ही हाथ में लड्डू रखो, एक के पीछे भागो ना तो काम होएगा ना। एकाग्र, ज्वालामुखी का मतलब भी क्या है, जब इसमें मन बुद्धि एकाग्र हो जाए एक चीज में, एक ही संकल्प रह जाए बाबा, तो अकारी स्थिति बनाने के लिए जितना हम ये करते जाएंगे, ये एबीसीडी का, मुरली का मतलब ज्ञान का, इस ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरण करते जाएंगे, मनन मन रिवाइज करते जाएंगे, चिंतन मन गहराई में जाएंगे, बाबा मुझे बनना ही है, मंथन मन कैसे बनना है, फिर बाबा बताएगा, टच करेगा, बच्चे तुम ऐसे करो ना, तुम ऐसे करो बच्चे, तुम ऐसे करो ना तो ऐसा हो जाएगा, बच्चे तुम दुकानदार हो ना, दुकानदारी पे ऐसे किया करो, ये बाबा ने आज कहा ना मुरली में कि बच्चे कैसे अलीफ और बे कैसे याद करना है, अल्लाह को बैठे दुकान पे बैठे बैठे कैसे याद करो, बादशाही कैसे याद करो, तो बाबा आपको विधि बता देगा, एक एक लाइन में बाबा गुह्यता बताएगा, उसका राज बताएगा, रहस्य बताएगा, उसकी महीनता बताएगा, सूक्ष्मता बताएगा, तो बाबा एक एक चीज को क्लियर कर देगा। और फिर मक्खन जो निकला ना, मंथन किया ना, अब उसको कार्य करते समय याद रखो, कार्य उसी स्थिति में कार्य करो, अपने को आत्मा समझ के, लोगों को दुकानदार दुकान पे दुकान लोग आए तो वो भी आत्मा है, इस भाव से बहुत प्यार से बात करो, बहुत मधुरता से बात करो, बच्चे हैं आपके घर में और हैं, आप घर में काम करते हो, खाना बनाते हो, कुछ करते हो, बाबा की याद में मैं बाबा का लिए भोजन बना रही हूं, कपड़े धो रहे, कुछ भी काम का सफाई कर रहे हैं, ये बाबा का घर है, मेरा घर नहीं है, ये मेरे बच्चे नहीं बाबा के बच्चे, ये मेरा पति नहीं, ये मेरी युगल नहीं बाबा का युगल है, ऐसे समझ के हर चीज में, हर चीज हर संबंध बाबा से अनुभव करो, और ड्रामा में जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो होने वाला सबसे अच्छा, बार बार अंदर से गहराई से जितना ये करते जाएंगे, इसको देही मानी स्थिति कहते हैं। और एक एक संबंध की अनुभूति करते हैं बाबा के साथ, देह में रह करके अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, एक संबंध से याद करते हैं, और जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, हो रहा है और होने वाला है, उसकी चिंता, पास का चिंता ना भविष्य की चिंता करो, तो ये जितना इसको कहते हैं देही मानी स्थिति, जितना ये घोटते जाएंगे, जितना घुटते जाएंगे, इसको मंथन मनन चिंतन मंथन करते जाएंगे, उतनी पवित्रता आती जाएगी। ज्ञान के मनन चिंतन मंथन करने से पवित्रता आती है, गुण पवित्रता गुण है, ज्ञान ज्ञान क्या है, ज्ञान रोशनी है, लाइट है, तो इस लाइट में जितना इस लाइट को जितना बढ़ाते जाओ, घुटते जाएंगे उतना हमारे अंदर क्या आएगी, गुण आता जाएगा, कौन सा, पवित्रता का गुण, अर्थात हमें हमारा क्या होगा, हमें अपना सत्य स्वरूप याद आता जाएगा, अनादि स्वरूप याद आता जाएगा, अनादि स्वरूप ना हमें परम धाम में ऐसे बिंदी आत्मा थे, क्योंकि बाप को याद करें ना उस मां से, और सत्युग में देवी देवता बने थे, अपना सत्व प्रधान स्वरूप याद आता रहेगा, बुद्धि में इमर्ज होता जाएगा, और दूसरे का भी, पत्नी का भी, पति का भी, माँ बाप का भी, भाई बहन का भी, बच्चों का भी, वो भी ऐसे थे, क्योंकि हमारे जो भी घर में रहते हैं, माता पिता है चाहे भाई बहन है चाहे पति, बच्चे ज्ञान में चलते हैं चाहे नहीं चलते हैं, वो भी देवी देवता कुल की आत्मा है हमारा, हम किसी के यहां ऐसे पैदा हो ही नहीं सकते जो हमारे कुल का नहीं हो, ये पक्का रहे, भले वो ज्ञान में चलते नहीं चलते, हमारे बच्चे हमारे ज्ञान में चलते नहीं, वो भी देवी देवता कुल की आत्मा है, भले अंत में आएंगी पर आएंगी देवी देवता कुल में, और वो आपसे ज्यादा ज्ञान समझते हैं, आपको चेक करते रहते हैं, देखो ये मुरली सुन के आया ना, आपके पीछे मुरली पढ़ भी लेते हैं चुपचाप, है ना, मेरी मम्मी ये मुरली सुन के आए, मेरा पापा ये मुरली सुन के आए, देखो करता नहीं करता है, वो चेक करते हैं, मुरली में तो ये लिखा था, आप गुस्सा कर रही हो मम्मी, आप पापा गुस्सा करते हो, मुरली में तो नहीं लिखा था आज, है ना, बोलते नहीं बोलते, तो ज्ञान को पढ़ते हैं वो, समझते हैं और आपको चेक करते हैं, वो इंस्पेक्टर है आपके, सुना, तो ये ध्यान रखना, कभी उनको ये नहीं समझना ये तो पापी है, ये तो बहुत बेकार है, अजामिल जैसे पापी नहीं है, वो आपके कुल में ही आने वाले हैं, आप ही के कुल में आएंगे, अभी उनसे ढंग से बात किया करो, हो सकता है आपसे आगे चले जाएं, आप उनके दास दासी बन जाओ, ऐसा भी हो सकता है ना, तो ये मत समझना कि उनको ऐसी वैसे है, वो ऐसे वैसे नहीं है वो, तो इसलिए अटेंशन रखना, तो ये अटेंशन जब रखेंगे तो सारा दिन पवित्रता माना आपके नादि आदि स्वरूप दिखाई देगा, और व्यवहार फिर बदलता जाएगा, क्योंकि ये व्यवहार पवित्रता वाला व्यवहार बनेगा, देही मानी स्थिति से अभी ये आत्मिक स्थिति आ रही है, क्या आत्म मानी स्थिति आ रही है, पवित्रता आ रही है माना आत्म मानी स्थिति आ रही है, पवित्रता आएगी तो शांति आएगी, शांति में ना जब पवित्र जितना पवित्रता आती जाएगी क्या क्यों कैसे खत्म होता जाएगा, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म होता जाएगा, ये प्रोसेस है, धीरे धीरे खत्म होगा, एकदम एक दिन में खत्म नहीं होगा। और फिर ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी स्थिति का अनुभव होता जाएगा, उतना आप असोचता बाप से कंबाइंड होते जाओगे। असोचता बाप है ना, हमारा बाप असोचता कुछ सोचता ही नहीं है, ना पास का सोचता है ना भविष्य का सोचता है, वर्तमान में जो कुछ होना होता है बाबा का टच होता है और बाबा फिर वो बोलता है या डायरेक्शन देता है। बाबा अपने आप को सोचता नहीं है, ब्राह्मण उसका सब कुछ होता है। तो ऐसा ही असोचता बाप से कंबाइंड होंगे तो हमारा क्या होगा, असोचता बाप से कंबाइंड होकर हम सोचेंगे देखेंगे पढ़ेंगे सुनेंगे बोलेंगे खाएंगे पिएंगे सैर करेंगे लोगों संबंध संपर्क में आएंगे सोएंगे, तो क्या होगा, पास का चिंतन खत्म हो जाएगा, भविष्य की चिंता खत्म, 90% विचार बंद हो जाएंगे, शांति माना वर्तमान में ही जो कुछ है ना एक्यूरेट समझ में आएगा, एक्यूरेट हम कर्म करेंगे, विचारों की ट्रैफिक एकदम स्लो हो जाएगी, इसी को शांति कहते हैं। अब शांति का गुण आ गया, शांति का व्यवहार हो जाएगा, हम शांति से एक दूसरे से बात करेंगे, शांति से व्यवहार करेंगे, धीरज से व्यवहार करेंगे, जल्दीबाजी खत्म हो जाएगी, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा, है ना। जब ऐसे शांति में रहने लगेंगे तो रूहानी प्यार पैदा हो जाएगा, क्योंकि हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे तो रूहानी प्यार माना जैसे बाबा के साथ रहेंगे ना ज्यादा सर, बाबा के साथ ही कंबाइंड रहने लग जाएंगे, तो हमें ऐसा फील होगा जैसे बाबा मेरा बाबा सबको कैसे करता है, सबको प्यार से देखता है, ब्रह्मा बाबा का व्यवहार समझ में आएगा, शिव बाबा कैसे बाप दादा कैसे व्यवहार करते हैं वो हमें समझ में आएगा, तो उससे फिर हमारे अंदर रूहानी प्यार पर ये हमारा ये तीनों स्थितियां पवित्रता शांति और रूहानी प्यार ये आत्मवान स्थिति है। हम आत्मवान स्थिति में पवित्रता बनती जाएगी शांति प्यार बनता जाएगा तो बाबा ये आत्मवान स्थिति में हमारा देही मान स्थिति में मेहनत है, पवित्रता शांति प्यार में एंजॉयमेंट है, अब याद करने मजा आएगा, याद करने अकाली स्थिति बनती जा रही है जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं ना रोज पवित्रता आ रही है, ये हमारी अकाली स्थिति बनती जा रही है, शांति पैदा होती जा रही, रूहानी प्रेम पैदा होता जा रहा है। अब ये जो प्यार सबको हम दुनिया में हर आत्मा को बिना शर्त के दिल से स्वीकार करेंगे, सम्मान से बात करेंगे, सम्मान से व्यवहार करेंगे, शांति से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, आत्मा समझ के बात करेंगे, तो क्या होगा, अभी हमारी बुद्धि और मन शुद्ध होता जाएगा, कर्म अच्छे होते जा रहे हैं, पवित्र बुद्धि पवित्र मन पवित्र संस्कार बनते जा रहे हैं, तो हमारा ये सूक्ष्म शरीर लाइट का बनता जा रहा है, रोशनी बढ़ती जा रही है, और फिर हम बाबा के साथ ऐसा महसूस होगा, चलते फिरते भी महसूस होगा जैसे बाबा मैं बाबा के साथ हूं, बाबा के सामने मैं, बाबा के सामने हूं, बाबा मेरे सामने, बाबा मुझे प्यार से देख रहा है, बाबा मुझे प्यार, बाबा मेरे साथ है, भगवान मेरा साथी, ईश्वर मेरे साथ है, हमेशा ऐसा महसूस, ये अत्यंत सुख की अनुभूति फेमस, अर्थात हम सूक्ष्मवतन में रहने लग जाएंगे, सूक्ष्मवतन की अनुभूति होती है, ये विदेही स्थिति का अनुभव होगा, आनंद माना देह और देह की दुनिया ही भूली रहा करेगी, कहीं फीलिंग खत्म हो जाएगी, मैं देह हूं, देह के संबंध याद आना ही बंद हो जाएंगे, आनंद की स्थिति, बीच बीच अपने आप ही अत्यंत सुख आनंद का झूले में झूलते रहेंगे, बाबा के साथ समा गया हूं, बाबा के साथ ही हूं, ये विदेही स्थिति है, ये सूक्ष्म वतन की स्थिति है। और जब ऐसे अत्यंत सुख आनंद की अनुभूति होने लगेगी तो फिर हमारी अशरीर स्थिति बनने लगेगी, अशरीर माना अब सत्य को प्रकट शक्ति आ गई कि मैं आत्मा बिंदी हूं, ये भी तो बिंदी है, सब बिंदी, हम सब आत्मा बिंदी है ना, सत्य तो हम बिंदी है ना, हम ये रोल लेके पाठ बजा रहे हैं जो कर्मों का हिसाब था चुकते हो रहा, सत्य क्या है, ट्रूथ क्या है, सत्य को यथार्थ निर्णय करने शक्ति आ जाएगी, एकदम एक्यूरेट निर्णय टाइम पे करेंगे, निर्णय करेंगे तो विस्तार सार में सिमटने लगेगा, सार विस्तार में ना देखी दुनिया देह और देखी दुनिया में जो बुद्धि फंसी पड़ी थी ना, बुद्धि और मन अभी निकल के मन बुद्धि सूक्ष्म पवित्र बनती जा रही है, और सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद का अनुभव होता रहेगा, हर बात में बाबा, हर बात में बाबा, ये फील होगा, अंतर्मुखी हो जाएंगे एकदम से, है ना, वेद की वैराग्य वृत्ति हो जाएगी, अनासक्त वृत्ति, खाने पीने में देखने में वृत्ति नहीं रहेगी, देखूं ये देखूं वहां जाऊं नहीं, बस इतना देर बैठूं तो मैं मुरली पढ़ूं ना, मैं बाबा के पास योग लगाऊं ना, ऐसे बुद्धि उपरा मतलब बेहद की ये विस्तार को सार में लाने की शक्ति आ जाएगी, हम ज्यादा सूक्ष्म वतनवासी बन के रहेंगे, मन बुद्धि से बाबा के पास ही रहेंगे, भले दुनिया में कुछ विनाश होता रहे हमें पता नहीं लगेगा, हमें ऐसा फील होता रहेगा बाबा की गोद में, बाबा मुझे समझा रहा है, बाबा मुझे पढ़ा रहा है, बाबा मुझे प्यार कर रहा है, ऐसा ही फील होता रहेगा, और फिर समेटनी शक्ति माना मन बुद्धि को समेटे बिंदी आत्मा बन के परमधाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो जाएंगे, जब बिंदी बाप से कंबाइंड होंगे तो सत्य की समझ अब रियल में कि मैं हम सब बिंदी हमारा बाप बिंदी, पवित्रता माना बिंदी हम सब बिंदी, पवित्रता माना बिंदी है, शांति माना भी बिंदी है, रूहानी प्रेम माना भी बिंदी है, अत्यंत सुख माना भी बिंदी है, आनंद माना भी बिंदी है, और सत्य को प्रेम शक्ति का माना भी, हर चीज बिंदु लगने लग जाएगा, हर चीज में बिंदु, हर चीज में बिंदु बिंदु बिंदु। जब बिंदु करंट माना करंट आनी शुरू हो जाएगी, रियल शांति क्या, रियल प्यार क्या, रियल सुख क्या, रियल आनंद क्या, पता लग जाएगा। जब ऐसे बिंदु की हर्ष में बिंदी बिंदी, ये निराकार स्थिति है, ये अशरीर स्थिति है। फिर इस दुनिया में जो कुछ भी हमने पाप कर्म, बाकी पाप कर्म तो बचे हुए ना, अभी खत्म तो नहीं हुए, फिर सहन करना सहज हो जाएगा। कुछ भी दुख आया, शरीर में आया, किसी ने गाली दी, इंसल्ट की है ना, कोई परेशानी आ गई, पांचों तत्वों का भूकंप आ गया, कहीं ज्वाल आग लग गई है ना, कहीं भूकंप, कहीं कुछ भी हो जाए, सहन करना सहज हो जाएगा। हम घबराएंगे नहीं, हंगामा कुछ दुनिया में होगा, हम सब घबराएंगे, सहन करना सहज, समाने की शक्ति आ जाएगी। सहन करके किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, समाने की शक्ति, और भी प्रॉब्लम आने को तैयार आए, भले आए, सामना करने शक्ति, सहयोग करें, फिर भी हम सबके सबका सहयोग करेंगे, सातों एनर्जी का बैलेंस हो जाएगा, हीलिंग एनर्जी, जल्दी जल्दी विक्रम विनाश होने शुरू हो जाएंगे सारी, और प्लस जो भी हमारे सामने आएगा हमें ना उसको फील होगा, शांति का, प्यार का, जैसे बताया ना अखंड दानी, हमारे में बोलने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। चेहरा, हमारा चेहरा कैसा हो जाएगा, हमारा एक एक संकल्प, हमारी एक एक भावना, एक एक वृत्ति, स्मृति कैसी बन जाएगी, हमारी आंखों से उनको म्यूजियम दिखाई देगा, अपना स्वरूप, अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, देवता स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप दिखाई देगा, आने वाली दुनिया दिखाई देगी उनको, हमारे मस्तक से दिखाई देगा, है ना, हमारा चेहरा एकदम दर्पण बन जाएगा, आर पार बराबर हो जाएगा, तरीके से उनके विक्रम विनाश हो जाएंगे, मिंद्राकारी स्थिति में विक्रम विनाश होते हैं। तो ऐसे बार बार बाबा के साथ बिंदु बन के बिंदु बन जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, तो सारे विक्रम विनाश होते जाएंगे, हमारे भी और दूसरों के भी, ऐसा फील होगा, उनके भी, उनको भी मदद मिलेगी। जैसे दादी आती है, दादी के सामने ऐसा बड़ी दादी आती है या बाबा आते, तो उनको हमारे भी, हमारा योग एकदम लग जाता है, उनका भी योग लग जाएगा, अज्ञानी का भी लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति बन, निराकार स्थिति बन जाए, ऐसी जब बनेगी तो हमारी, तो इस तरह की ड्रिल, साकारी, आकारी, तो क्या दैवीमानी स्थिति, ज्ञान का जो बाबा की मुरली का मनन चिंतन मंथन, इसको दैवीमानी स्थिति कहते हैं। दैवीमानी स्थिति का मतलब जितना घुटो, यही बाबा की कृपा आशीर्वाद है, बाबा की पवित्रता, बाबा हमें ऊपर से देता नहीं है, हमको बनानी पड़ती है, शांति ऊपर से देता नहीं है, हमको बनानी पड़ती है, प्रेम हमको बनाना पड़ता है, अतिंद्रिय सुख आनंद हमको बनाना पड़ता है, जितना धारणा करते जाते अमृत वेला पावरफुल होता जाएगा, मुरली सारा दिन अटेंशन रहेगी, सारा दिन मुरली अंदर जाएगी, अटेंशन रहेगा, और सोने के पहले सच्चाई से हम एक एक लेटर लिख के बाबा को, एक एक बात, बाबा ऐसा हुआ, बाबा ऐसा हुआ, बाबा को बताएंगे, किसी और को नहीं बताएंगे, अपना चार्ट सच्चाई से लिखेंगे, बाबा की मुरली पढ़ के बाबा की गोद में सो जाएंगे। तो जब ऐसा होगा तो निरंतर हमारी चलते फिरते उठते बैठते साकारी, सूक्ष्म वतन में थोड़ी देर में, सूक्ष्म वतन में थोड़ी देर परमधाम, सेकंड में परमधाम, सेकंड साकारी, आकारी, निराकारी, निराकारी, आकारी, साकारी, ये ड्रिल हमारी पक्की होती जाएगी। और जब ऐसे विक्रम विनाश होते जाएंगे इसके द्वारा, और विक्रम विनाश होते होते क्या होगा, हमारे हमारे जो हमारे अंदर सर्वगुण आने लग जाएंगे, सर्वगुण आ जाएंगे, सातों गुण भर जाएंगे ना, कर्मों में आएंगे सातों गुण भर जाएंगे, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला माना 100% बन जाएंगे, संपूर्ण निर्विकारी, किसी विकार का अंश भी नहीं रहेगा, और मर्यादा पुरुषोत्तम एकदम 100% सारी मर्यादाएं आ जाएंगी, अहिंसा परमोधर्म, काम विकार का अंश खत्म हो जाएगा, लाइट का ताजा जाएगा, और क्रोध लोभ मोह अहंकार के बाल बच्चों का विनाश हो जाएगा, तो हमारे विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताजा जाएगा। मतलब यहां बैठे बैठे, कहीं भी आप दिल्ली में रहते हो, बॉम्बे में रहते हो, कहीं रहते हो, वहां बैठे बैठे सारी जगह आपको साक्षात्कार होता रहेगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा कि मैं वहां जाऊं, वहां जाऊं, आपको बैठे बैठे अपने आप ही मनसा सेवा होती रहेगी, तो ऐसी स्थिति हमारी बन जाएगी। तो साकारी, आकारी, इसका साधन क्या है, मुरली का मनन चिंतन मंथन, दही मानी स्थिति बेसिक चीज है, ये मेहनत करो, घोटते जाओ, आत्मनि स्थिति बनेगी, पवित्रता, शांति, प्यार आता जाएगा, उससे फिर इसमें रह के बाबा को याद करो, फिर आपकी क्या उससे विदेही स्थिति बनती जाएगी, मतलब सूक्ष्म वतन वाली स्थिति बनती जाएगी, सूक्ष्म वतन में रहकर फिर बाबा को याद करेंगे, शिव बाबा को, तो हमारी कौन सी अशरीरी स्थिति बनती जाएगी, बिंदी आत्मा बने, बिंदी परमधाम से घर में रहेंगे, और वो निराकार स्थिति बने, और उससे हमारे विक्रम विनाश होते जाएंगे, और उससे हमारे सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, लाइट का ताज, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आ जाएगा, और वो उसके अनुसार हमको भविष्य में रतन चरित आ जाएगा। ओके, ऐसे तो इसके साधन क्या है, ब्रह्मचर्य, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग, और अवगुणों को छोड़ो, दैवी गुणों को धारण करो, चार इसके पिलर्स हैं, उससे फिर पावरफुल अमृत वेला बनता जाएगा। मुरली सारा दिन अच्छी बुद्धि में जाएगी, रिकॉर्ड होती जाएगी, सारा दिन बजती रहेगी, अंदर अटेंशन रहेगा, मनन चिंतन मंथन सिमरण चलता रहेगा, और सोने के पहले हर पोता में सच्चाई से दे पाएंगे, मतलब लेटर लिखेंगे, चार्ट भरेंगे, मुरली पढ़ के बाबा को याद करके सो जाएंगे, बाबा की गोद में सो जाएंगे। ओम शांति। दो मिनट बाबा को याद करेंगे।
प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे।